नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, क्रिएटिव सिलेक्शन। केन कुसिएंडा की गैर कथात्मक पुस्तक है दी ब्रोबरिक, जो स्टीव जॉब्स के अंतिम वर्षों में एप्पल के भीतर सॉफ्टवेयर और उत्पाद डिजाइन के कामकाजी तरीकों का प्रत्यक्ष विवरण देती है। कुसिएंडा ने एप्पल में लगभग 15 वर्ष काम किया और सफारी, मूल आईफोन के ऑनस्क्रीन कीबोर्ड तथा आईपैड सॉफ्टवेयर से जुड़ी टीमों का हिस्सा रहे। पुस्तक का विषय किसी रहस्यमय कॉर्पोरेट सूत्र का दावा करना नहीं है। इसका उद्देश्य दिखाना है कि छोटे दल, कार्यशील प्रोटोटाइप, कठोर समीक्षा और बारंबार सुधार के माध्यम से उपयोग में सरल दिखने वाले उत्पाद कैसे बनाते हैं। लेखक इस प्रक्रिया को क्रिएटिव सिलेक्शन कहते हैं, जिसमें अनेक विचारों में से बेहतर विकल्पों को क्रमशः चुना और सुधारा जाता है। वे अपने अनुभवों के आधार पर प्रेरणा, सहयोग, शिल्प, परिश्रम, निर्णायकता, रुचिबोध और सहानुभूति को उत्कृष्ट रचनात्मक कार्य के 7 आवश्यक तत्वों के रूप में रखते हैं। इसलिए यह पुस्तक एप्पल का इतिहास भर नहीं, बल्कि डिजाइन निर्णयों, इंजीनियरिंग अनुशासन और मानवीय निर्णय क्षमता का विश्लेषण भी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, क्रिएटिव सिलेक्शन का विकासवादी मॉडल। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि अच्छी डिजाइन अक्सर एक ही प्रतिभाशाली क्षण से नहीं निकलती, बल्कि चयन की सतत प्रक्रिया से बनती है। कुसिएंडा इस प्रक्रिया को विकासवादी मॉडल के रूप में समझाते हैं। पहले कई संभावित समाधान बनाए जाते हैं, फिर उन्हें वास्तविक उपयोग, तकनीकी सीमाओं और अनुभवी आलोचना के सामने परखा जाता है। जो विकल्प अधिक स्पष्ट, तेज, सहज या विश्वसनीय सिद्ध होता है, वही अगले चरण तक जाता है। कमजोर विकल्पों को हटाना असफलता नहीं, बल्कि प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। यह दृष्टि उस धारणा से अलग है कि टीम पहले विस्तृत योजना लिखे और फिर उसे यथावत लागू कर दे। एप्पल के संदर्भ में कार्यशील नमूने अधिक महत्वपूर्ण थे, क्योंकि किसी इंटरफेस की गुणवत्ता को पढ़कर नहीं, उसे चलाकर समझा जा सकता है। इस स्क्रीन पर स्पर्श, गति, प्रतिक्रिया और दृश्य क्रम साथ मिलकर अनुभव बनाते हैं, इसलिए प्रोटोटाइप बहस को अनुमान से प्रमाण की ओर ले जाता है। मॉडल का व्यावहारिक अर्थ यह भी है कि सुधार का चक्र छोटा रखा जाए। टीम को इतना ठोस काम बनाना चाहिए कि उस पर उपयोगी प्रतिक्रिया मिल सके, पर इतना जटिल नहीं कि उसे बदलना कठिन हो। पुस्तक चयन को केवल वरिष्ठ नेतृत्व की पसंद नहीं मानती। तकनीकी व्यवहार्यता, उपयोगकर्ता की समझ और टीम की सामूहिक समीक्षा भी चयन के आधार बनते हैं। इस तरह रचनात्मकता और अनुशासन परस्पर विरोधी नहीं रहते। दूसरा, 7 तत्वों में रचनात्मक काम की कसौटी। कुसिएंडा अपने अनुभव को 7 तत्वों के माध्यम से व्यवस्थित करते हैं: प्रेरणा, सहयोग, शिल्प, परिश्रम, निर्णायकता, रुचिबोध और सहानुभूति। यह कोई औपचारिक एप्पल नियमावली नहीं, बल्कि लेखक द्वारा पीछे मुड़कर पहचाना गया ढांचा है। इसकी उपयोगिता इसलिए है कि यह नवाचार को केवल विचार उत्पन्न करने तक सीमित नहीं रखता। प्रेरणा का अर्थ उत्कृष्ट पूर्ववर्ती काम से सीखना है, उसकी सतही नकल करना नहीं। सहयोग अलग अलग विशेषज्ञताओं को जोड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अनुभव में डिजाइन, इंजीनियरिंग और उत्पाद निर्णय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिल्प किसी विचार को विश्वसनीय, सुसंगत और बारीकी से लागू करने की क्षमता है। परिश्रम उस लंबे काम को स्वीकार करता है, जिसमें परीक्षण, त्रुटि सुधार और बार बार पुनर्निर्माण शामिल होता है। निर्णायकता का महत्व तब उभरता है जब विकल्प बहुत हो। अनंत चर्चा के बजाय पर्याप्त समझ के बाद दिशा चुननी पड़ती है। रुचिबोध उस चयन की गुणवत्ता है, यानी यह पहचानना कि कौन सा समाधान सरल और संतुलित महसूस होता है। सहानुभूति टीम को अपने तकनीकी दृष्टिकोण से बाहर निकालकर उपयोगकर्ता की स्थिति में रखती है। पुस्तक का सार यह है कि इनमें से किसी एक गुण से उत्कृष्ट उत्पाद नहीं बनता। उदाहरणतः तेज इंजीनियरिंग यदि उपयोगकर्ता की उलझन को न समझे तो अधूरी है। इसी तरह सुंदर विचार यदि उसे बनाने का शिल्प और धैर्य न हो तो उपयोगी उत्पाद नहीं बनता। तीसरा, दिखाने योग्य प्रोटोटाइप और कठोर समीक्षा। क्रिएटिव सिलेक्शन में प्रस्तुतिकरण का अर्थ केवल स्लाइड या अवधारणा समझाना नहीं है। कुसिएंडा के वर्णन में काम को चलाकर दिखाना केंद्रीय है। एप्पल की समीक्षा संस्कृति में किसी प्रस्ताव की विश्वसनीयता इस बात से बढ़ती थी कि वह वास्तविक उपकरण या कार्यशील सॉफ्टवेयर पर कैसा अनुभव देता है। इससे निर्णयकर्ता को परिणाम की प्रत्यक्ष अनुभूति मिलती थी और बनाने वाले को अस्पष्ट प्रशंसा या अस्वीकृति के बजाय ठोस प्रतिक्रिया मिल सकती थी। लेखक स्टीव जॉब्स के समक्ष प्रगति दिखाने की तनावपूर्ण स्थितियों का वर्णन करते हैं। इन प्रसंगों का व्यापक अर्थ यह नहीं कि हर संस्था को किसी एक व्यक्ति की कठोर शैली अपनानी चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण सीख यह है कि जवाबदेही तब स्पष्ट होती है जब टीम अपना अधूरा भी वास्तविक काम सामने रख सके। समीक्षा का लक्ष्य केवल अनुमोदन पाना नहीं, समस्या को जल्दी उजागर करना होना चाहिए। पुस्तक यह भी रेखांकित करती है कि एक विकल्प लेकर पहुंचना पर्याप्त नहीं माना जाता था। टीमों से विकल्पों की खोज, उनके पीछे के तर्क और सुधार की संभावना दिखाने की अपेक्षा होती थी। इससे निर्णय मनमाना होने के बजाय तुलनात्मक बनता है। फिर भी लेखक का विवरण यह संकेत देता है कि ऐसी संस्कृति समय, तैयारी और स्पष्ट मानकों की मांग करती है। यदि समीक्षा केवल भय पैदा करे और सीखने का अवसर न दे, तो प्रोटोटाइप ईमानदार प्रयोग के बजाय सुरक्षित दिखावे बन सकते हैं। अतः पुस्तक की उपयोगी सीख है दृश्यमान काम, स्पष्ट मानदंड और तेज प्रतिक्रिया को साथ रखना। चौथा, सफारी और आईफोन कीबोर्ड में तकनीक तथा अनुभव का संतुलन। पुस्तक के सबसे ठोस हिस्सों में सफारी और मूल आईफोन के सॉफ्टवेयर की रचना शामिल है। सफारी के मामले में एप्पल को ऐसे वेब ब्राउजर की आवश्यकता थी जो मैक पर तेज और सक्षम अनुभव दे सके। टीम ने खुले स्रोत वाले कोड आधारों का अध्ययन किया और KDE के कॉन्करर से जुड़े आधार पर आगे काम किया। यह उदाहरण दिखाता है कि नवाचार हमेशा शून्य से निर्माण नहीं होता, उचित तकनीकी आधार चुनना भी एक महत्वपूर्ण रचनात्मक निर्णय है। गति के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए टीम ने पेज लोड टेस्ट जैसा स्वचालित माप विकसित किया। इसका सिद्धांत सीधा था, प्रत्येक बदलाव को ऐसे माप के सामने रखना जिससे उत्पाद धीमा न हो। गुणात्मक समीक्षा जैसे रूप, अनुभव और मानक अनुपालन आवश्यक रही, लेकिन मापनीय प्रदर्शन ने निर्णय को एक अतिरिक्त स्वतंत्र कसौटी दी। इससे गुणवत्ता केवल व्यक्तिगत धारणा पर निर्भर नहीं रहती। आईफोन कीबोर्ड का प्रसंग दूसरी तरह की समस्या दिखाता है। भौतिक कुंजियों के बिना छोटे स्पर्श पर्दे पर लिखना उपयोगकर्ता के लिए सहज कैसे बने? इसका उत्तर केवल अधिक कोड लिखने में नहीं था। अलग लेआउट, कुंजी आकार और प्रयोग के अनुभव को बार बार जांचना पड़ा। यहां सहानुभूति और शिल्प तकनीकी समाधान से जुड़े हैं। उपयोगकर्ता क्या देखता, छूता और गलती से दबाता है, वही इंटरफेस की वास्तविक कसौटी बनता है। दोनों उदाहरण मिलकर बताते हैं कि मजबूत उत्पाद विकास में प्रदर्शन, व्यवहार और अनुभव को अलग अलग विभागों की समस्याएं मानना पर्याप्त नहीं है। अंत में एप्पल की कथा से मिलने वाली सीमित लेकिन उपयोगी सीख। यह पुस्तक एप्पल की सफलता को किसी एक पद्धति या स्टीव जॉब्स की व्यक्तिगत इच्छा से समझाने से बचने का अवसर देती है। कोसिंडा का प्रत्यक्ष अनुभव बताता है कि उच्च मानक, छोटे दलों, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, गोपनीय परियोजनाओं और लगातार समीक्षा के वातावरण में काम करते थे, पर इन स्थितियों को हर संगठन में ज्यों का त्यों दोहराना न संभव है न आवश्यक। किसी बड़े या कम केंद्रीकृत संगठन में निर्णय का ढांचा, जोखिम और संसाधन अलग होंगे। पुस्तक की अधिक स्थानांतरित की जा सकने वाली सीख प्रक्रिया के स्तर पर है। पहली, राय के बजाय कार्यशील नमूने से चर्चा करें। दूसरी, समाधान चुनने से पहले वास्तविक विकल्प तलाशें। तीसरी, अनुभव जन्य गुणवत्ता के लिए जहां संभव हो वहां स्वचालित माप बनाएं। चौथी, सरलता को कम काम समझने की भूल न करें, क्योंकि सरल अनुभव के पीछे अक्सर जटिल प्रयोग और संपादन होता है। साथ ही पुस्तक अतिरेक परीक्षण आधारित डिजाइन पर अप्रत्यक्ष प्रश्न उठाती है। हर नया अनुभव केवल दो विकल्पों के सांख्यिकीय मुकाबले से तय नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब उपयोगकर्ता को अभी यह पता ही न हो कि बेहतर अनुभव कैसा हो सकता है। इसका अर्थ आंकड़ों को छोड़ना नहीं है। अधिक संतुलित निष्कर्ष यह है कि आंकड़े, विशेषज्ञ, रुचिबोध, प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रोटोटाइप सभी अलग प्रकार की जानकारी देते हैं। कोसिंडा की दृष्टि में बेहतर निर्णय इन्हें प्रतिस्पर्धी नहीं, पूरक बनाकर लेने चाहिए। निष्कर्ष में, क्रिएटिव सिलेक्शन उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डिजिटल उत्पाद, उपयोगकर्ता अनुभव, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या रचनात्मक टीमों के संचालन में रुचि रखते हैं। उत्पाद प्रबंधक, डिजाइनर, डेवलपर और तकनीकी नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग इसमें विचार से कार्यशील उत्पाद तक जाने की व्यावहारिक समस्याओं को पहचान सकते हैं। एप्पल और स्टीव जॉब्स के इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी यह पुस्तक मूल्यवान है, क्योंकि इसका आधार बाहरी टिप्पणी नहीं, एक सहभागी इंजीनियर का अनुभव है। पुस्तक का मुख्य लाभ यह है कि यह उत्कृष्टता को अमूर्त नारे के रूप में पेश नहीं करती। यह दिखाती है कि बेहतर परिणाम विकल्पों की खोज, प्रोटोटाइप, समीक्षा, तकनीकी माप और बारंबार संशोधन से आते हैं। सफारी के प्रदर्शन परीक्षण और आईफोन कीबोर्ड के विकास जैसे प्रसंग सिद्धांत को ठोस बनाते हैं। पाठक इससे अपने काम में छोटे प्रयोग, साफ गुणवत्ता मानदंड और प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता केंद्रित समीक्षा की जरूरत समझ सकते हैं। इसी श्रेणी की कई पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर इसका सीमित लेकिन गहरा दायरा है। यह एप्पल की कॉरपोरेट रणनीति, बाजार मूल्य या नेतृत्व की प्रशस्ति पर केंद्रित नहीं है। इसका केंद्र सॉफ्टवेयर बनाने की दैनिक प्रक्रिया है, जहां सौंदर्य बोध और इंजीनियरिंग एक दूसरे से अलग नहीं होते। फिर भी इसे किसी सार्वभौमिक एप्पल नुस्खे की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। इसकी सबसे टिकाऊ बात है, श्रेष्ठ विचार पहले प्रयास में नहीं मिलते, उन्हें स्पष्ट कसौटियों के साथ खोजा, परखा और चुना जाता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं केन कोचियंदा, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।